गान में कि वर्धमान महान दिन बितरे हमारे घर। समय सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की गाथा नंबर 113, 14 और 15 इन पर कल एक व्याख्यान किया था। इन पर तो व्याख्यान हो चुका है, लेकिन इसमें जो जयसेनाचारी कुछ विशेष बात कहते हैं, विशेष बात तो नहीं है, विशेष तरह से पेज नंबर 183 सबसे नीचे की तीन पंक्तियां या अनुशीलन में, यद्यपि आचार्य जयसेन ने भी तात्पर्य वृत्ति में आत्मख्याति का ही अनुसरण किया है, तथापि प्रश्नोत्तर के रूप में कुछ नया प्रमेय भी प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है। प्रश्न, आप बहुधा ऐसा कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से जीव क्रोधादि का अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। अब प्रश्न यह है कि जिस प्रकार व्यवहार नय से जीव द्रव्य कर्मों का करता है, उसी प्रकार व्यवहार नय से भाव कर्मों का भी करता है, तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्व प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार नय से ही है। तो कहते दो भेद ही क्यों डाले तुमने द्रव्य कर्म और भाव कर्म के, क्योंकि द्रव्य कर्म का कर्ता भी जीव व्यवहार नय से है और भाव कर्म का कर्ता भी जीव व्यवहार नय से है। जब दोनों में एक नय लागू पड़ता है तो दो कर्म बनाने की जरूरत या अकेला कर्म ही रखो और उसमें द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों गर्भित मान लो। ये वैसा ही प्रश्न है कि जैसा हम कहते हैं कि परद्रव्य में एकत्व अमत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये व्यवहार नय का विषय है, तो आत्मा पर को जानता भी तो इसी नय से है। तो जिस तरह की ये मिथ्यात्व हम और अपराध हैं, ऐसा ही जानना भी मिथ्यात्व और अपराध होना चाहिए, बिल्कुल इसी प्रकार का तर्क अपने मुमुक्षुओं में उपस्थित किया जाता है। ये तो आपने बहुत गहराई से देखा है कि जब हम कलशों का पाठ करते हैं और गाथाओं का पाठ करते हैं तो कुन्न कुन्न की भाषा भी बिल्कुल, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गद्य जैसी ही सामने आती है। क्या न्याय शास्त्र जितने लिखे गए हैं, खासकर जो उनमें टीकाएं हैं और विस्तार से जिनमें खंडन मंडन है, वो सब गद्य में लिखे गए हैं। और उसका कारण ये है कि पद्य में ऐसी ताकत नहीं है जो तर्क और युक्तियों के भार को वहन कर सके। वो तो छंद और अलंकारों में तो बहुत मजा आ जाता है उसमें, समझे? किसी का वर्णन करना हो, नायक का, नायिका का, नगर का, तो पद्य बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन एवं तेज एवं साध एवं तेज एवं साध, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें थोड़ी भाषा कमजोर पड़ती है। लेकिन पहले शुरू शुरू में तो सब पद में ही लिखा गया। उसका सबसे ज्यादा मजबूत कारण ये है कि ये पहले शास्त्र लिखे ही नहीं जाते थे, भगवान महावीर से लेकर और भूतपली पुष्पंत ने जब लिखना शुरू किए उसके पहले 500-600 वर्ष तक एक लिखा ही नहीं गया, है ना? तो आप मानो दिगंबरों को निर्ग्रंथ कहते हैं, श्वेतांबर अपने को निर्ग्रंथ नहीं कहते हैं। क्या? तो निर्ग्रंथ का मतलब ग्रंथ माने परिग्रह, और परिग्रह से रहत तो है ही, लेकिन परिग्रह से रहत तो वे भी अपने को मानते हैं, कहते हैं तुमने तीन चीजें रखी, पिथी, कमंडल और शास्त्र, और हमने 14 उपकरण रखे हुए, 23 का फर्क है। यदि 3 उपकरण के रखते हुए भी आप निर्ग्रंथ हो सकते हो तो हम 14 जो आवश्यक हैं उनके रखते हुए निर्ग्रंथ क्यों नहीं हो सकते। उनका तर्क यह है कि दिगंबरों के पास शास्त्र नहीं थे, ग्रंथ नहीं थे, इसलिए वे अपने को निर्ग्रंथ कहते हैं। यानी उनने तो भगवान महावीर की वाणी जो मौखिक चली आई ना, उसके आधार पर ही उनका धर्म चला, पर हमारे शास्त्र तो पहले से थे। समझा, अर्थ समझा ना, मेरे ग्रंथ। और बात ऐसी भी है, भी ऐसी मतलब कि अपने यहां पिछी कमंडल तो अनिवार्य है और वो साधु को खुद ही लेना पड़ता है। ये आजकल जो श्रावक लोग ले लेते हैं वो बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? कि फिर साधु स्वतंत्र नहीं रहा, कहां जाना है उसे। जहां वो श्रावक चलेगा ना कमंडल पीछी लेके, उधर ही जाना पड़ेगा। श्रावक चला गया इधर और साधु चला गया इधर, तो बिना पीछी कमंडल के फिर वो क्या करेगा? तो उसे इतना ध्यान तो रहना ही पड़ेगा, कहीं श्रावक तो वहीं जाएगा जहां साधु जाएगा, लेकिन आ रहा पीछे के नहीं। ऐसा विकल्प तो बार बार देखने का आएगा ही ना। क्यों? अपना सामान किसी के साथ हो तो आपको भी ये विकल्प रहता है कि नहीं? तो जो 24 घंटा अपने में जरूरत है, बाथरूम जाना है, कहीं बैठना है, तो किसी से सफाई करनी है, कोई जीव जंतु ना मर जाए, तो वो चीज दूसरे के हाथ में कैसे दी जा सकती है? फिर वहां बैठना भी संभव नहीं रहेगा। कहीं कहीं तो रास्ता ऐसा होता है कि एकदम बहुत जीव जंतु दिखाई देते हैं, तो वो अपनी पीछे से थोड़ा सा सफाई करके और वहां पैर रख के आगे बढ़ते हैं। तो वो 4 कदम भी बिना पीछी के नहीं चल सकते हैं। और मलमूत्र का भी ऐसा ही है, कभी भी आ सकता है। इसलिए सफाई का साधन भी 24 घंटा उन्हें उनके साथ रहना चाहिए, और वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते, पराधीन है। अब शास्त्र ऐसे हैं, मौखिक कितना याद रखें, तो एक शास्त्र की परमिशन है जो दिन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए वे साधु लोग कोई एक किताब नहीं रखते हैं, अपनी एक डायरी टाइप रखते हैं और उसमें वो सब नोट कर लेते हैं, क्योंकि इस किताब में जो चीज उन्हें चाहिए वो नहीं है, इसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है। तो जो उनको दैनिक आवश्यक है, प्रतिक्रमणादि उनका उसमें होता है, जैसे 10 भक्ति वगैरह हैं जो बोलना उनको जरूरी है। और भी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे समय सार की गाथाएं वगैरह, वो सब उसमें अपने नोट कर लेते हैं वो। इसलिए जितनी भी ये किताबें मिलती हैं ना, पंचाशिकाय संग्रह, द्रव्य संग्रह, ये सब संग्रह ग्रंथ हैं, वे उनके बनाए हुए नहीं हैं, वे लेखक नहीं है उसके। उनने अपनी रुचि के अनुसार यहां वहां जो गाथाएं प्रचलित थी, जो उनके गुरु ने उन्हें पढ़ाई थी, तो उनने अपने लिए वो संग्रह कर ली थी। तो अपन कहते हैं ये फलाने मुनिराज का संग्रह है और उसमें से हमने ये छापी है। फिर अपन छापते वक्त, लिखते वक्त उसे और व्यवस्थित कर देते हैं। तो बाद में जो ग्रंथ की बात आई ना कि निर्ग्रंथ, तो वो ग्रंथ का ऐसा अर्थ करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, ग्रंथ माने गांठ भी होती है, ग्रंथी होती ना, कि जिनके मन में कोई गांठ नहीं है, सीधा सरल व्यवहार है, वे निर्ग्रंथ हैं। तो ये जो गाथाएं वो जैसेनाचार्य की है, वो यही तर्क देते हैं कि जिस नए से व्यवहार से कहा आपने, तो जब एक ही नए सब जगह लगा तो सबको एक सा व्यवहार करना चाहिए ना। देखो, पर को अपना मानना, उनका स्वामी बनना, उनका कर्ता भोक्ता बनना, ये तो मिथ्यात्व तो है, लेकिन उनको जानना ये भी मिथ्यात्व है क्या? यदि ये मिथ्यात्व होता तो केवल ही सबसे बड़े मिथ्यादृष्टि होते, क्योंकि वे सबको जानते हैं। तो फिर ये कई नए क्यों लगाया? तो कहते हैं चार में वो नए लगाना की अपेक्षा दूसरी है और जानने में नए लगाने की अपेक्षा दूसरी है। तो वो तन्मय होके नहीं जानते, इसलिए ये अपेक्षा है वहां परमात्मा प्रकाश में ये लिखा है। और अथवा वो पर या ना जहां पर आ जाए वहां विभाग लगा दो, पर के साथ कोई संबंध बताया जाए तो वहां व्यवहार लगा दो। तो यदि वो व्यवहार है तो उस व्यवहार से मिथ्यात्व तो नहीं होता, क्या समझे? तो ये जैसा वहां लगा ऐसा यहां कहते हैं कि एक क्रोध नामक जो कर्म है, जो कारमाय वर्णा का पुद्गल का बना हुआ है, और एक जो गुस्सा अपन को आता है वो भी क्रोध है, इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं भाव कर्म और उसे बोलते हैं द्रव्य कर्म। और इन दोनों का कर्ता व्यवहार नैसे भगवान आत्मा है, ये शास्त्र में कहा है। वो कहते हैं जब एक ही नैसे दोनों का कर्ता है तो अज्ञानी भी, पर का तो अज्ञानी भी कर्ता नहीं है, लेकिन अज्ञानी रागादिक का कर्ता है, ऐसा भेद क्यों डाला? क्या देखो अब प्रश्न क्या आ रहा है? आवाज क्या किया? कि जिस प्रकार व्यवहार में से जीव द्रव्य कर्मों का करता है, उसी प्रकार व्यवहार में से भाव कर्मों का भी करता है। तो फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में एकत्व प्राप्त होगा। भाई इनको एक ही कहो ना, आप उसे भी पुद्गल कहते हो, इसे भी पुद्गल कहते हो, तो दो भेद करने से क्या फायदा है? क्योंकि दोनों का ही कर्ता आत्मा व्यवहार में से ही है। प्रश्न समझ में आया ना? अब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कैसे समझ में आएगा? ऐसा ही है जी, क्या आप इन्हें भी भाई साहब बोलते हो और इन्हें भी भाई साहब बोलते हो कि क्या व्यवहार से? क्योंकि ये भी तो व्यवहार नए वाले ही भाई साहब हैं, जो हमारे सगे सगे भाई साहब मान जाए हैं, वो भी तो व्यवहार में से ही अपने भाई साहब है ना। और जो बिल्कुल एक मुसलमान है उसको भी हम भाई साहब बोलते हैं, वो भी उसी व्यवहार में से ही बोलते हैं। तो इन दो में अंतर क्या है? मैं तो एक ही लगा। प्रश्न समझ लिया? तो मैंने कहा कल बताया था परसों कि इसका तो इतना बड़ा खाता है असदूत व्यवहार नए का कि ये अमेरिका भी अपना है, सारी दुनिया अपनी है वहां से लेकर, और गुणभेद भी अपना है, अपने में गुणभेद है, यहां तक इतना बड़ा खाता व्यवहार के खाते में चलता है। तो सभी को एक कह दें, लेकिन शिष्य के दिमाग में प्रश्न हुआ तो हुआ है? क्या देखो उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवहार में से रागादि भाव कर्मों का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, उस व्यवहार नय को अशुद्ध निश्चय नय के नाम से भी कहा जाता है। यह कथन द्रव्य कर्मों से भाव कर्मों का तारतम्य दिखाने के लिए किया जाता है। देखो वैसे फर्क तो है, अभेद दिखाएं तो अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं रागादिक को, और भेद दिखाएं तो व्यवहार बोलते हैं, बोलते ना। यहां उनको दूसरी बात समझानी है ना, तो वो भेद नहीं डालते हैं, कहते उसे तो अशुद्ध निश्चय नहीं से कहते हैं, और इसे व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि उसने कहा था दोनों को व्यवहार से ही कहते हैं। उसकी बात को वहां से हटाने के लिए कि नहीं, ये तो अशुद्ध निश्चय नहीं से है, रागादिक का कर्ता अज्ञानी अशुद्ध निश्चय में से है, और पर का कर्ता व्यवहार में से है, भेद खड़ा कर दिया ना। तो शिष्य छोड़ने वाला थोड़ी है। शिष्य कहता है हमने तो शास्त्र में कई जगह इसको भी व्यवहार में से करता कहा देखा है। तो वो कहते हैं कि अरे भाई शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय को भी तो व्यवहार कह देते हैं, इसलिए व्यवहार का फर्क है लेकिन व्यवहार से का। अब देखो वास्तव में अशुद्ध निश्चय नय को थोड़ी व्यवहार कहते, सुनना क्यों कि वो तो राग और आत्मा का अभेद बताए। रागी आत्मा तो अशुद्ध निश्चय नय होता है और आत्मा राग का कर्ता तो व्यवहार नय होता है। भेद भेद रूप हो तो व्यवहार होता है और अभेद रूप हो तो निश्चय होता है, लेकिन इसको इन्हें यहां गौण किया। तो भैया देखो जैसे वो कहते इसमें अशुद्ध निश्चय नय लगाया राग के कर्ता में, तो क्यों लगाया, क्योंकि आत्मा राग रूपण में हुआ अभेद है। तो वो कहता पुद्गल कर्म में भी लगा दो निश्चय में अशुद्ध निश्चय में, कि नहीं ऐसा उसमें नहीं लग सकता, परद्रव्य में नहीं लग सकता। ये जो अपना सगा भाई है ना, इसको तो हम आधा हिस्सा देंगे संपत्ति का, लेकिन वो मुसलमान को भाई कह रहे उसको थोड़ी दे देंगे, लेकिन नहीं तो एक ही लगा हमारे पास भाई भाई भाई, इसमें भी वही उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा और उसमें भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। क्यों स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा मंगल देश गांव सारी दुनिया, इतने में एक ही व्यवहार नहीं लगता है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, खैर नहीं। अच्छा तारतम्य दिखाने के लिए हमने कह दिया कि तारतम्य क्या है तुम्हारा वो बताओ हमारे लिए। यद्यपि द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, देखो अब यहां भेद किया तो वहां भी दो अभी कहते आ रहे हैं ना कि अचेतन है अचेतन है, कितनी घिसाई करी थी अभी अचेतन की है? और फिर यहां कह रहे द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा भाव कर्म भी अचेतन ही है। अशुद्ध निश्चय नय से भाव कर्म को भी अचेतन कहते हैं, बोले क्या करे, वो सामने वाला लड़ता है कि अच्छे तुम्हारे नहीं इस कारण अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय ही है। ये जयसेनाचार्य ने यहां लिखा जो जयचंद जी छाबड़ा ने भावास में अपने लिख दिया एक जगह, जो अपन जयचंद जी के नाम से चलाते हैं ना, जयचंद जी ने लिखा अशुद्ध निश्चय नय भी तो व्यवहार ही है क्या, है ना। वो वास्तव में ये जयसेन का कथन है, जब वे उसकी टीका लिख रहे थे तो जयचंद जी छाबड़ा, तो उन्होंने अकेली आत्मख्याति को ही पढ़ा होगा ऐसा थोड़ी है, टीका भले ही अकेली आत्मख्याति की लिखी लेकिन जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति को भी उन्होंने पढ़ा है ना, तो इसमें जो एक नई बात थी वो उन्होंने उसमें डाल दी। अब चूंकि हमने जयसेनाचार्य को नहीं पढ़ा इसलिए हमारे लिए वो जयचंद जी की होगी, क्यों क्या तक तकलीफ, जो आचार्य की थी वह पंडित की हो गई, इसलिए वजन कम हो गया उसका फिर जो संस्कृत में थी वो हिंदी की हो गई इसका भावार्थ यह है कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है और रागादि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अशुद्ध निश्चय नय से है और अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अशुद्ध नय भी व्यवहार ही है, ऐसा उन्होंने लिखा। देखो मैं जो आपको एक और इसमें से नई बात बताता हूं कि भैया वो व्यवहार है लेकिन व्यवहार में भी फर्क है ना, एक सद्भुत व्यवहार नय से है और एक असद्भुत व्यवहार नय से, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है और एक उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से है। तो हम व्यवहार नय के भी तो बदल गए ना, लेकिन जब हमने अकेला व्यवहार का नाम लिया तो अकेला व्यवहार कहेंगे तो ऐसे ही बोल देंगे व्यवहार नय से है, अब उसमें चार में से कोई भी भेद हो सकता है, तो भेद भी है गहराई में जाए तो, ऊपर से कहेंगे तो भेद नहीं भी है। है ना। शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन आते हैं। आत्मा को शुभाशुभ भावों का कर्ता भोक्ता कहीं तो व्यवहार ने से बताया है और कहीं अशुद्ध निश्चय ने से। इस प्रकार के कथन को पढ़कर चित्त में जो असमंजस हो जाता है उसका निराकरण तात्पर्य वृत्ति के उक्त कथन से भली भांति हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य यही है कि बंद के कारण रूप जो मिथ्यात्वादि प्रत्यय है यह भगवान आत्मा उनसे भिन्न है, इस कारण यह भगवान आत्मा बंद का कारण भी नहीं है और बंद का कर्ता भोक्ता भी नहीं है। क्योंकि जैसे जो वर्णादि से भिन्न है वैसे रागादि से भी तो भिन्न है ना। क्या वर्णादि अरु रागादि तेने जो भाव को न्यारा किया, वर्णाद्याद्या राग मोहा देवा सर्वे भावा भिन्न एवा सपुंसा। तो इस तरह जो तीन गाथाएं थी उन गाथाओं में जैसे ना चार्य ने क्या अर्थ किया विशेष, ये स्पष्टीकरण उसमें था जो आत्मख्याति में नहीं था, इसलिए अपन ने ये वहां से ले लिया। तो इस तरह से आपका जयसेनाचार्य की टीका का भी स्वाध्याय होता जा रहा है कल में, है ना। अब आगे की गाथाएं हैं पढ़ते हैं। अब आगामी 10 गाथाओं में एक 10 गाथाओं का ग्रुप आएगा, पांच पांच के ग्रुप में दो तरह से। इन 10 गाथाओं को दो कलशों में बांधा है, ये परनमन की शक्ति जब है ना उसमें विघ्न तब क्यों न हो, स्वयं करता स्वयं के प्रणमन का जो वो कलश है ना, खुद गलों में है स्वाभाविक प्रणमन की शक्ति जब और उनमें है न कोई विघ्न तब। और इसके आगे का कलश में ये लिखा जब जीव में है स्वयं शक्ति स्वयं के प्रणमन की, ऐसा है ना, जब यहां पुद्गल में थी अब उसमें जीव में आ गई है। पढ़ो बात इन 10 गाथाओं में कही है, और दो कलश और 10 गाथाएं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना कि जितने काल तक आपका उपयोग इस तरह रहे उतना ही अच्छा है। मैं एक पूछना चाहता हूं, और उनके प्रण मन में है न कोई विघ्न जप, ये संस्कृत में कौन सा शब्द है कि जिसका ये अनुवाद किया गया है, सोचो। पढ़ो पढ़ो छंद पढ़ो। अभिघ्ना अभिघ्ना शब्द है, स्थिति अभिघ्ना खलु पुद्गल से। अभिघ्ना का अर्थ है कौन सा है न जिसमें कोई विघ्न जब, मुनि शक्ति पड़ी है लेकिन अभिघ्न पड़ी है, जिसमें कोई विघ्न नहीं आए ऐसी शक्ति पड़ी है। शक्ति होती है लेकिन उसमें विघ्न बहुत आते हैं बहुतों में, तो कहते हैं प्रणमन की शक्ति में कहीं कोई विघ्न नहीं आ सकता, माने जो द्रव्य स्वयं के प्रणमन को कर रहा है तो कोई अगर उसमें विघ्न डाल देवे तो वो कुछ देर को रुक जाए प्रणमन करने को, ऐसा संभव नहीं है। इसका नाम अभिघ्ना शक्ति है? है? देखो ये गाथाएं पढ़ते हैं अपन। देखो जब आगामी गाथाओं में श्रेष्ठ यह समझाते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति होने से, वो 47 शक्तियां हैं उनमें एक परिणाम शक्ति है, वे स्वयं ही परिणामनशील हैं, उन्हें स्वयं के परिणामन में पर की अपेक्षा व्यंच मात्र भी नहीं है। क्यों नहीं अभी पर की अपेक्षा? तो कहते शक्ति ही उसे कहते हैं जिसमें पर की अपेक्षा ना हो, जिसमें पर की अपेक्षा हो उसे शक्ति नहीं, उसे कमजोरी कहते हैं। क्या कि थोड़ा तो मेरा को सहारा दे देना, मैं बैठा हूं तो उठना है मुझे, कि लाठी रख लो, तो ये वो कमजोरी की निशानी है कि शक्ति की? तो कहते उसके परिणामन में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। जब 47 शक्तियों का वर्णन किया इसी समय सार में, तो आपने पढ़ा होगा, यदि गहराई से पढ़ा है तो उसमें एक प्रश्न है कि गुरुदेव बार बार कहते हैं ना कि यहां जो आत्मा की बात चल रही है वो दृष्टि के विषयभूत आत्मा की बात नहीं है, घबराना नहीं। तो किसकी है? कि जिसमें अनंत गुण शामिल है और उनका निर्मल परिणमन शामिल है, निर्मल पर्याय को शामिल करीने बात है। तो पर्याय शामिल है तो वो दृष्टि का विषय तो नहीं रहा निर्मय। तो उनने कहा जब इसमें तुमने परिणमन को शामिल कर लिया तो शक्तियों में, तो फिर आगादि विकार को भी शामिल कर लो, क्योंकि वो भी तो परिणमन ही है ना, जीव गई। तो उन्होंने कहा वो नैमित्तिक भाव है, स्वाभाविक परिणमन नैमित्तिक भाव नहीं है। आप समझे? नैमित्तिक भाव है तो उसमें तो पर की अपेक्षा लग गई ना, मेरे समझना, तो वो तो कमजोरी हो गई, शक्ति कहां गई? आत्मा की कमजोरी के कारण राग होता है, तो शक्ति के कारण तो भीतरागता में परिणमित होता है। शक्ति तो भीतरागता रूप परिणमित होने की है, और कमजोरी के कारण राग हो जाता है। तो शक्तियों के प्रजन में कमजोरी को शामिल कैसे किया जा सकता है? तो अब जरा इसमें एक और प्रश्न खड़ा करो, बोलो रमेश जी लगाओ माथा, कि उसमें कर्म का उदय निमित्त है, साय में रागादिक में, और इसमें कर्म का क्षय निमित्त है। केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान पूर्ण पर्याय, तो कर्म का निमित्त तो रह गया, हो गया ना, तो ये भी कहां रहा, ये शक्ति कहां रहा, इसे भी कमजोरी मानो। प्रश्न समझ में आया क्या नहीं आया? तो उन्होंने कहा कर्म का क्षय निमित्त है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्षय माने क्या होता है? अभाव। तो अभाव निमित्त है ना, अभाव निमित्त है माने निमित्त का अभाव है। समझा? थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करो क्या कह रहा हूं मैं। कर्म का क्षय निमित्त है तो तुम पॉजिटिव बोल रहे हो, वास्तव में तो कर्म का क्षय माने अभाव, तो अभाव निमित्त है ना, तो इसका मतलब निमित्त का अभाव हो गया। इसलिए केवल ज्ञान को नैमित्तिक भाव नहीं कहते, समझ गया? रागादिक को नैमित्तिक भाव कहते हैं, केवल ज्ञान को नहीं कहते हैं, समझे ना? अच्छा, तो क्यों नहीं साहब कहना, तो ये बिना छह के तो होता नहीं है। तो जो पहला ये पहले समय का केवल ज्ञान हुआ, तो पहले समय में केवल ज्ञान नहीं था और ज्ञानावनी कर्म का उदय था, तो उसका क्षय हो गया दूसरे समय में, तो केवल ज्ञान हो गया। अब तीसरे चौथे समय में अब तो क्षय नहीं हुआ, क्योंकि जो काम पहले समय में ही हो गया द्वितीयाधिक समय में तो नहीं हुआ, क्यों? तो कैसे घटित करोगे? तो वो कहेगा कि नहीं नहीं क्षय है ना, कायम है ना, वो क्षय हुआ था,
तो फिर अनंत काल तक निमित्त लगा उसको।
अभाव अभावात्मक निमित्त की क्या कीमत है? आज तक अभावात्मक निमित्त को कोई कहा जाता है? हम ये कहें कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, क्यों बन गई? कि लाल बहादुर शास्त्री मर गए इसलिए बन गई। तो कोई मानेगा एक कारण है तो लाल बहादुर शास्त्री मर गए इसलिए मैं क्यों नहीं हुआ, मैं शास्त्री था ना, इंदिरा गांधी क्यों हुई, क्या मतलब उसका? इसी तो एक अरब लोग खड़े हैं, किसी के मरने से कोई होता होगा तो वो ही क्यों? लेकिन फिर भी अभावात्मक निमित्त की चर्चा भी होती है तो हम कह दी, लेकिन उसकी क्या कीमत है? देखो क्या बात चल रही थी अपनी। सर्वप्रथम गाथा 116 से 20 तक सांख्य मतन में आई शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध करते हैं। सांख्य मत का अनुयायी शिष्य वहां गुरुदेव उनके सामने बैठा है, समझे, कुंद कुंद के सामने। देखो जरा सर निकालो अभी पेज गाथा पढ़ने के पहले। ये है ना, यदि चार पैरा छोड़ दो पांचवा पैरा पढ़ो। उक्त गाथाओं की उत्थानिका में, उत्थानिका की चर्चा है ना वहां विवेक उसकी बात करें, आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि अब सांख्य मता में आई शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करते हैं। अब ये सांख्य मत में क्या है ऐसा क्या? कि पुद्गल को परिणाम, सांख्य मत क्या मानता है कि उनके यहां भी एक जो जैसे अपना पुद्गल और जीव है ना, ऐसे उनके यहां एक पुरुष और प्रकृति दो है पदार्थ मूल में, वैसे तो 25 है, प्रकृति से 24 और हो जाते हैं, प्रकृति तो महान महान से तन्मात्रा इंद्रिया जाने दो चक्कर में मत पड़ो अपन, पर दो है मुख्य पदार्थ जैसे अपने जीव और पुद्गल है ना, ऐसे उनका पुरुष और प्रकृति। अब उनके यहां पुरुष बिल्कुल अकर्ता है सर्वथा, और जो कुछ करती है वो सब प्रकृति ही करती है, क्या जो भी परिवर्तन दिखता है ना उसकी कर्ता वो प्रकृति है। प्रकृति है मूल में एक है, फिर उसमें से पांच तन मात्राएं पैदा हो जाती हैं, फिर इंद्रियां पैदा हो जाती हैं, फिर ये पैदा हो जाती हैं, फिर 24 बन जाते हैं, ऐसे 25 तत्व होते हैं सांख्य में। अब जो पुरुष को जो अकर्ता मानते हैं ना, कि जो भी आत्मा माने पुरुष माने आत्मा, अपने आप ही पुरुष माने आत्मा है, पुरुषात्मा अस्थि पुरुषात्मा दिखा कर नहीं देखा पुरुषादिपाय में, तो उनके यहां सर्वथा अकर्ता मानते हैं। अपन ने तो कथनचित माना है रागादि का अकर्ता पर का अकर्ता, और उनके यहां सर्वथा मानते हैं। तो कर्म ही सुलावे कर्म ही जगावे माने सब प्रकृति करती है, पुरुष कुछ भी नहीं करता। तो जो ऐसी दृष्टि वाले शिष्य हैं कि मैं तो सर्वथा अकर्ता हूं, तो नींद आ गई तुम्हें भैया कि मैं क्या करूं, निद्रा दर्शना वर्णी कर्म का उदय था वो, तो निद्रा दर्शना वर्णी कर्म को बोलो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, निद्रा दर्शना वर्णी कर्म का उदय आएगा, तो तुमने खाना क्यों खाया कि क्या करूं, सुधा वेदनी कर्म का उदय था इसलिए खाया। तो अपने यहां भी कर्म को प्रकृति बोलते हैं, भाग्य की बात ऐसी है, पुरुष को आत्मा बोलते हैं और कर्म को प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति होते हैं या कर्म की प्रकृतियां हैं। तो जो ऐसा देनी है जो सारी गलतियों को अपने माथे पर बिल्कुल नहीं लेकर कर्म के माथे पर मरना चाहता है उसको कहते हैं सांख्य मतान आई शिष्य। है तो अपना शिष्य लेकिन उसके अंदर उस बात का हक है कि जो निश्चय ने से अकर्ता कहा है ना, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या कहूं पुराने कर्म का उदय ऐसा ही आ गया कि देखो तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या कहेगा, फिर तुम गाली नहीं देते तो मैं गुस्सा नहीं करता, फिर गुस्सा करता तो तुम कहते। तो ये तो बहिरंग निमित्त की बात हुई। अच्छा हम कल से गाली नहीं देंगे फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर तो नहीं आएगा ना। और फिर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि तो क्रोध नामक कर्म का उदय होगा ना, अंतरंग निमित्त तो वो है ना। अब वो क्रोध कर्म का उदय होगा तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा ना फिर। तो या तो तुम्हारी गलती है मुझे गुस्सा आने में, और या कर्म की गलती है मुझे क्यों दुख देते। तो सारे पाप भाव करेगा समझना, और अपनी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे शिष्य को वो कहते हैं सांख्य मतानुयायी शिष्य है। शिष्य तो है कुंद कुंदाचार्य का, और सांख्य मत को मानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सुनो यहां प्रश्न हो सकता है ना, कि आचार्य कुंद कुंद का शिष्य होकर कोई व्यक्ति सांख्य मतानुयायी कैसे हो सकता है? क्योंकि जो सांख्य मत को मानने वाला होगा वह जैनाचार्य का शिष्यत्व तो कैसे स्वीकार करेगा? कोई कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर के भी, ऊपर से तो कहते हैं हम जैनी हैं, जैन धर्म सच्चा धर्म है, निश्चय नये के पक्ष को सुनकर जो निश्चयभाषी होते हैं ना, वे सांख्य मतानुयायी शिष्य हैं। जो व्यवहाराभाषी हैं वे बौद्ध मतानुयायी शिष्य हैं। कौन से? जिनको अनित्यता का पक्ष है, ये नित्यता के पक्ष वाले हैं। लेकिन सरकम सरकम सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये सब चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, तुम चले जाएंगे, और वैराग्य के पक्ष में ये बात कहते हैं। वे काहे को लड़ते हो, कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं, दो दिन चार देने की चांदनी है। तो उनको बोलते हैं बौद्ध मतानुयायी शिष्य। क्यों? सब कहां चला जाएगा? ये संयोग हैं, ये पर्याय हैं, ये जाएगा। भगवान त्रिकाली ध्रुव तो तुम्हें मौजूद ही है ना, जाएगा वो तो बहुत अल्प है, और जो रहा वो तो बहुत है। अरबों रुपया तुम्हारे बैंक में जमा है, वे तो सुरक्षित हैं, और जेब कट गई, रो रहा है, कितने की 200 रुपया थे। यदि वो अपने को 200 रुपया है, वे तो सब साफ हो गया, अब वापसी की टिकट की व्यवस्था भी नहीं है, बस के पैसा भी नहीं है, अब तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे रोता है समझ गए ना। तो उसको समझाते मूर्ख चंद, तू अरबोपति है, इस क्षण 200 रुपये के लिए क्या रोता है, उधर तो देखता नहीं है। तो जिसकी द्रव्य पर दृष्टि नहीं है, अकेली पर्याय दृष्टि, उसने बहुत ही मतलब आई नहीं हूँ, और जो सांख्य मतलब जो अकर्तावादी है, माने आत्मा कर्ता नहीं है, इसका सर्वथा एकांत मानते हैं, और जैनी कथनचित करता है और कथनचित करता नहीं है, निश्चय नहीं से करता नहीं है, व्यवहार नहीं से करता है। कहेगा सबका, पर का भी, रात का भी, अपने प्रण मन का भी, और निश्चय नहीं लगाते जाएंगे तो सबकी भी धीरे धीरे छुट्टी कर देंगे। पहले पर की करेंगे, फिर रात की करेंगे, फिर अपने प्रण मन में भी इस तरकीब से करेंगे कि करता तो तू ही है, लेकिन फेरफार करता नहीं है। फिर मत बाजार में आता, तू चाहे कि मैं जैसा चाहूं वैसा होगा तो ऐसा नहीं। तो देखो कोई कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर भी निश्चय नये के पक्ष को सुनकर उसके एकांत में चढ़ जाते हैं, और वस्तु के परिणमन स्वभाव की उपेक्षा कर उसे सर्वथा अपरिणामी मानने लगते हैं। पुरुष को सांख्य लोग अपरिणामी मानते हैं, पुरुष माने आत्मा। तो ऐसे लोग ये भी अपने आत्मा को अपरिणामी, बिल्कुल परिणमनशील नहीं है, परिणमन का नाम नहीं आ जाए, घुस ना जाए अंदर में। इसमें अंत के कलश निकालो, कितने कितने मार्मिक हैं आप पता नहीं है। वो जो है ना 14 कलश एकांत वाले, बहुत मार्मिक हैं। देखो देखो आप कैसे कैसे मूर्ख हैं जैनियों में, वो बताएंगे आपको। ये 8 कलश है ना, नमूने के रूप में एक बताऊंगा, बस घबराना नहीं। ये 8 कलश है ना, 8 एकांतियों के, परिशिष्ट में होंगे, परिशिष्ट में। देखो पेज नंबर निकालो 584, जो 552 से शुरू होते हैं ये संसाय, 552 से नहीं और पहले से भी एक छंद में 248 छंद, पेज नंबर 517 का गेयाकार गेयाकार चलता है ना शांति जी। देखो गेयाकार रूप कलंक से स्वयं को मलिन मानकर उस धो को धो डालने की कल्पना करता हुआ अज्ञानी प्रगट रूप से अनेकाकार ज्ञान को एकाकार करने की इच्छा से अनेकाकार न मानकर नष्ट होता है। अब जो आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या वो क्या है, वो क्या कहता है कि मैं ज्ञान गेयों को जानेगा, तो चूंकि गेय अनेक हैं, तो उन सबके आकार ज्ञान में भाषित होंगे, तो ज्ञान अनेक आकार हो जाएगा। तो ज्ञान अनेक आकार हो गया, तो जो ज्ञान एक आकार रहा उसको बोलते हैं ज्ञानाकार, और वो अनेक आकार हो गया उसको बोलते हैं गेयाकार। तो कहते गेयाकार के कलंक को ढूंढे, वो गेयाकार से कलंक लगता है। तो गेयाकार जो मैल गेयाकार का दो डालने के भाव से, क्या कि ये गे हमारे ज्ञान में झलक गए तो कलंक हो गया, बस खत्म, सर को जानने में आ गया ना, वही मुद्दा है। आता है आप लोगों की समझ में, वो कहते हैं हमारे ऊपर पदार्थ हमने जाना तो लेटरिन जानी, तो लेटरिन से हमारा ज्ञान गंदा हो गया, क्यों गंदी है ना लेटरिन, गंदा क्यों नहीं होगा। जो मैल गया कार्य को धो डालने के भाव से जाना ही नहीं, और उसको बोलते हैं ये भाव वाला बोल है कि एक आकार माने भाव का एक पक्ष और अनेक आकार में दूसरा पक्ष, बोलते हैं ना एक है अनेक है, एक अनेक वाला बोले। तो कहते गेयों को जानने से ज्ञान में जो आकार बनते हैं वो अलग अलग होंगे। हमने तुम्हें जाना तो तुम्हारा आकार हमारे ज्ञान में बना, इन्हें जाना तो इनका आकार बना, खंभे को जाना तो खंभे का आकार बना, तो ज्ञान अनेक आकार रूप से परिणत हो गया। अब बात तो एक ही है, लेकिन ये जिसको जाना उसके नाम से उसका नाम पढ़ा गेयाकार, लेकिन वो जो आकार बना उसमें कच्चा मटेरियल किसका लगा, आत्मा का। तो वो ही आकार जिसमें तुम जानने में आए ज्ञानाकार भी है और गेयाकार भी है, ये तो है अनेकांत। वो एक ये मानता एकांत से ये गेयाकार ही है, इसलिए हमको गेयाकार बनना ही नहीं है, क्यों, इसलिए हमको गेय को जानना ही नहीं है, गेयाकार के मेल को धू डालने के भाव से कुछ गेयों को जानने का निषेध करता है। वो कहते गेयाकार वो उस वक्त हुआ ही नहीं, तेरा ज्ञान तो ज्ञान ही रूप रहा ना, ज्ञान ने अपने स्वभाव को थोड़ी छोड़ दिया। वो कहता जो गेय झलकेंगे तो मान लो ज्ञान नष्ट हो गया, कि दर्पण में झलकेंगे सारे पदार्थ तो दर्पण टूट जाएगा, फूट जाएगा। देह का झलकना उसे मैल लगता है। जो मैल गेयाकार का दो डालने के भाव से, देखो इसे मैल काय का अर्थ किया है, वो तो संस्कृत में जो है, छंद पढ़ो, ऊपर की पंक्ति पढ़ो, कलंक का अर्थ मैल किया है, मेचक जो अनेकाकार, अनेकाकार को वो मैल मानता है, मेचका मेचकत्व जो आता है ना, मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार। तो गेयों को जाना तो गेय के आकार हुआ, तो गेय चूंकि अनंत हैं, तो वो अनंत आकार हो गए, इसलिए उसे बोलते हैं अनेकाकार। गेयाकार माने अनेकाकार और एकाकार माने ज्ञान तो ज्ञान के ही आकार में रहा, ज्ञान ने ज्ञानत्व बने को नहीं छोड़ा। तो उसे एक डर लगता है कि गेय जानने में आएंगे तो मेरा ज्ञान गेयाकार परिणत हो जाएगा। तो आता ना ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवार के, तो वो कहते हैं कि छोड़ना क्या है, ध्यान से सुनना, थोड़ी बारीक बात है कहना उन्होंने, कि वो जो गे तुम्हारे जानने में आया है उसमें तुम अपनापन स्थापित करो, मैल तो ये है, उसे तुम कर्ता भोक्ता बनो, मैल तो ये है, उसके तुम स्वामी बनो, मैल तो ये है, उसको जानना ये मैल नहीं है, उसने वो जानने को भी मैल मान लिया, जबकि वो तो उसका स्वभाव था। जो मैल गेयाकार का दो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को, एकत्व माने एकाकार को, और एकांत से वे नष्ट हों, अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, देखो अनेक गेयों को जान करके भी एकत्व को जिस आत्मा ने नहीं छोड़ा, वे स्यादवादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करें। वो जो तत्व मेला कैसे हो जाएगा, वो तो स्वभाव से ही धुला हुआ है, उसे धोने की जरूरत नहीं, स्वतः छालित वो मेला होता ही नहीं। अनंत गेयों के जानने पर भी ज्ञान में मेल आता ही नहीं, तो इसके विरुद्ध दूसरा कलश आएगा। ये कहते हैं अभी गया गेयों को नहीं जानता है, वो कहते ज्ञानाकार ही नहीं है, मेरे तो ज्ञानाकार ही नष्ट हो गया, ज्ञानाकार ही नष्ट हो गया। तो ये ऐसे आठ कलश हैं और इसमें इतना ही इतना मरम भरा हुआ है, बहुत मार्मिक कलश हैं ये आठ, जो हमारे दिमाग घूमते रहते हैं तो अभी जिंदे क्या। देखो अब यही आ जाते हैं, इस दोस्त के भय से कहां पेज आ गया, कौन सा पेज था भैया बना, हाँ तो ब्यासी पे आ गए, कैसे नहीं ब्यासी में ही है, छियासी, हाँ छियासी बोलो, हाँ इसका भावार्थ, यद्यपि द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा भाव कर्म भी अचेतन ही है, है? अच्छा 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 छियासी, हाँ अभी तो अपन गाथाओं पे ही चल रहे भैया, हाँ अच्छा 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 अब आया क्या मैंने, यहाँ कुंद कुंद का शिष्य है, कोई कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर भी निश्चय नये के पक्ष को सुनकर उसके एकांत में चढ़ जाते हैं और वस्तु के परमन स्वभाव की उपेक्षा कर उसे सर्वथा अपरिणामी मानने लगते हैं। वे प्रगट रूप से तो जैन ही रहते हैं पर उनकी अंतर मान्यता सांख्यों जैसी हो जाती है। ऐसे लोगों को यहाँ सांख्य मतानुयायी शिष्य कहकर संबोधित किया है। इन गाथाओं में संयुक्त यह सिद्ध किया गया है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, उसे अपने परिणमन में परके की रंज मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इतना जब पुद्गलों में परिणमन की शक्ति स्वयं है, इन पांच गाथाओं में सिर्फ ये सिद्ध किया, तो अगली पांच गाथाएं आएंगी तो ऐसी जीव में भी स्वयं परिणमन की शक्ति है, चलना है ना। इसमें है अभिघ्ना स्थित अभिघ्ना खलु पुद्गल से है ना, और जीव में क्या है निरंतर आया। देखो ध्यान रखे एक एक चीज के वहां यहां अभिघ्ना लिखा और वहां निरंतर आया लिखा। जगह छंद में जैसी होती है ना, इसे तेती जीव से निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति है ना, यहां निरंतराय लिखी। पर अपन ने आत्मा में है स्वभाविक परिणमन की शक्ति जब, और यहां भी ऐसे अनुवाद किया है सब पुद्गलों में है स्वभाविक परिणमन की शक्ति जब, अपन ने कोई अंतर नहीं डाला क्योंकि अपन को तकलीफ नहीं थी। एक एक जगह उनने अभिघ्ना लिखा और एक जगह निरंतराया लिखा, और हमने दोनों का अर्थ यही कह दिया है स्वाभाविक, मैं स्वाभाविक अर्थ दिया और है ना कोई विघ्न जब, ये निरंतराय का अर्थ हो गया और उनके परिणमन में है ना कोई विघ्न जब। जब एक छंद आप बोलते हैं ना, और हम वहां अपने घर से भी सुनते हैं तो हमारी कली कली खिल जाती है, और इसे तुम अशुद्ध बोलो इन छंदों को, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। जैसे वो होता ना नाचने वाले जो गाने वाले, यदि वो कोई सामने वाला गा रहा हो और जरा उसने उसके हिसाब से कर दे तो उसके माथे में तीन सले पड़ जाते, अब उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितना महत्वपूर्ण तत्व है ये पंक्तियों पर मेरे बहुत हृदय में अंदर से उल्लास आता है। आत्मा में है स्वाभाविक दो छंद भी पढ़ते रहो तो जैन धर्म का मर्म तुम्हारे ख्याल में आएगा। भाई पुद्गल में अपने परिणमन की शक्ति है, जीव में अपने परिणमन की शक्ति है, अब तुम जबरदस्ती उसके पीछे जीव को पुद्गल परिणमाए, पुद्गल को जीव परिणमाए, इसकी क्या जरूरत है। जीव अपने आप परिणमन करता है, पुद्गल अपने आप परिणमन कर सकता है, हमको तो यह लगता नहीं दूसरे का सहयोग चाहिए। यदि सहयोग चाहिए तो उसकी परिणाम शक्ति क्या करेगी, पुद्गल में भी परिणाम शक्ति है और जीव में भी परिणाम शक्ति है, तो दोनों परिणाम शक्ति खाली बैठी रहेंगी। यानी थोड़ा सा हम सहयोग कर दें कि नहीं तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है। चलो मैं बोलता हूं, कभी मैं प्रश्न कर रहा हूं, अब इसमें एक लड़का कोई भी आदमी मेरे से एक प्रश्न करे और मैं उसका जवाब दू, इसके बीच में आप समझाएंगे नहीं नहीं ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो आप क्या समझते हो कि आपने मेरा सहयोग किया, सहयोग किया कि अपमान किया, हमने तो सहयोग किया था। अरे सहयोग नहीं है अपमान है, तुमने ये समझा कि हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, हमारा उत्तर ठीक नहीं है सही नहीं है, इसलिए आप बीच में कूद के आए, हमें आपके सहयोग की जरूरत नहीं है। तो जब पुद्गल में अपने परिणमन की शक्ति है और तुम जबरदस्ती हाथ लगाओ उसमें, क्यों बीच में लगाते हो, तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है उसे, क्यों कि वो उसको ये मानते हो आप कि उसमें इस काम को करने की शक्ति नहीं है। आप ऐसा करो कि बुढ़े आदमी को ऐसे हाथ का सहारा देकर चलाओ, उठाओ पकड़ के ले जाओ, तो वो बहुत खुश होगा, आपको बहुत आशीर्वाद देगा। लेकिन अच्छे 25-30 आदमी के हत्ते करते जवान को उसको क्या भैया जरा ऐसे, तो फिर क्या करता, उसको गुस्सा आएगा कर जाएगा, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, आप मेरे उठने में सहायता कर रहे हो, क्यों एक बच्चे को खिलाओ तो वो खुश होगा, एक बुड्ढे को खिलाओ हाथ से उठा उठा के तो भी खुश होगा, एक हत्ते करते जवान आदमी को भैया क्या करते हो तुम, मैं अपना हाथ उठा खा नहीं सकता, तुमने मुझे क्या समझाया। तो जब प्रत्येक द्रव में अपने परिणमन की शक्ति है तो एक दूसरे द्रव का बीच में हस्तक्षेप क्यों हो, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, उसके लिए ये जो है ये गाथाएं दस और ये कलश दो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये 24 घंटे पाठ करने जैसे हैं।